आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार, मेरा नाम बिंदिया है और हम संविधान के राजनीतिक दर्शन पर चर्चा कर रहे थे। ये आपका अध्याय क्रमांक 10 है, जहाँ पर संविधान के दर्शन को उल्लेखित किया गया है और इसी को हमें समझना है। हम अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम जान लेते हैं कि अभी तक इस टॉपिक में हमने क्या क्या समझा, एक उसकी समरी को हम समझ लेते हैं। तो संविधान के दर्शन का मतलब संविधान में सिर्फ कानून बनाना नहीं है। अभी तक हमें लगता था कि संविधान का कार्य सिर्फ कानून बनाना है, परंतु संविधान में मूल्य भी हैं, उसके आदर्श भी हैं और यही सब उसके राजनीतिक दर्शन की नींव को रखते हैं। तो संविधान के दर्शन से आशय है कि संविधान में जो भी मूल्य दिए गए हैं, आदर्श दिए गए हैं, चाहे वो स्वतंत्रता हो, समानता हो, लोकतंत्र हो, सामाजिक न्याय हो या फिर राष्ट्रीय एकता, संविधान इन सबके लिए प्रतिबद्ध है और यही इसके राजनीतिक दर्शन की नींव है। हमने इसके साथ ये भी जाना कि जो ये दर्शन है उसका कहना है कि जो भी तरीके अपनाए जाए वो शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके होने चाहिए। भारतीय संविधान में अभी तक हमने जाना कि धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, संघवाद, मताधिकार, सामाजिक न्याय, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलके इसके राजनीतिक दर्शन को बेहतर ढंग से समझाते हैं। और कल हमने जो मुख्य रूप से समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में पढ़ा और आज हम इस पर आगे चर्चा करेंगे कि और कौन से दर्शन। एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि संविधान के दर्शन का जो सर्वोत्तम संक्षेप है या सर्वोत्तम उसकी डेफिनेशन अगर आपको कहीं देखनी है तो वो हमें मिलती है संविधान की प्रस्तावना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वहां पर क्लियरली लिखा गया है कि हम किस तरीके का देश बनाना चाहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जो अलग से जो उसके मूल्य और हैं राजनीतिक दर्शन के, उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे। आप पाठ्य पुस्तक खोल लें और पृष्ठ क्रमांक 228 पर आ जाए। हम आगे बढ़ेंगे, आज चर्चा करेंगे धर्मनिरपेक्षता। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा था जब हम मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे थे कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हर व्यक्ति को तो उसको जो धर्म की पूजा करना चाहता है उसका अधिकार है, परंतु देश का अपना कोई धर्म नहीं, मतलब आधिकारिक कोई धर्म नहीं। अगर ये धर्म नहीं है तो इसका मतलब है कि धर्मनिरपेक्षता है वो राज्य धर्म को आधिकारिक या सार्वजनिक रूप से मान्यता प्रदान नहीं करता। मतलब ये भी है कि वो किसी धर्म को वैल्यू नहीं करता, पर ये गलत है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि वो सबको समानता देता है। तो जब शुरुआत हुई थी हमारे संविधान की तब वहां पर ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र नहीं था, लेकिन हम थे धर्मनिरपेक्ष थे लेकिन लिखा नहीं गया था हमारे। और यहाँ भी जो मुख्य धारा की पश्चिमी धारणा में व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित अधिकारों की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता को धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा गया। अब आपने एक शब्द पढ़ा, पारस्परिक निषेध, इसको अंग्रेजी में कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। का मतलब क्या, इसका मतलब है कि जो धर्म है और राज्य, राज्य मतलब देश है ना, जो धर्म है और राज्य है वो एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से अलग रहेंगे। और राज्य के लिए जरूरी है कि वह धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें और धर्म को भी चाहिए वो कि राजनीति की जो राज्य की नीति है उसमें दखल ना दे, ना राज्य संचालन को प्रभावित करे। अर्थात पारस्परिक निषेध का अर्थ है कि धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग होनी चाहिए। दोनों चीजें देश और धर्म एक साथ नहीं हो सकते, एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। साथ में रह सकते हैं लेकिन इंटरफेयर एक दूसरे के कामों में नहीं कर सकते। तो ये जो पारस्परिक निषेध, उसका अर्थ क्या, उसका भी तो कोई राजनीतिक दर्शन रहा होगा, उसके पीछे भी तो कोई सोच रही होगी। तो देखिए, इसका उद्देश्य था व्यक्ति की स्वतंत्रता। हमने कहा ना कि हमारा संविधान शुरू से स्वतंत्रता की बात कर रहा है। तो इसका कहना था कि जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देते हैं, वो पहले से ही मजबूत धर्म का और ताकतवर बनाते हैं। जब धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगते हैं, जब वे बताने लगे कि किसी व्यक्ति को ईश्वर से किस तरह जुड़ाव रखना चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, तो व्यक्ति के पास स्थिति में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए राज्य से अपेक्षा रखने का विकल्प होना चाहिए। लेकिन जिस राज्य ने स्वयं उन संगठनों से हाथ मिला लिया हो, क्या वो सहायता कर सकता है? इसीलिए किसी व्यक्ति की अगर हमें धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखनी है, तो राज्य का काम है कि धार्मिक संगठनों की सहायता ना करे। बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति की अपनी फ्रीडम है, वो किस धर्म को अपनाना चाहता है। अगर राज्य हस्तक्षेप करने लगा तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के संग एक छेड़छाड़ है। लेकिन साथ साथ में ये भी जरूरी है कि राज्य जैसी संस्था धार्मिक संगठनों को भी ना बताए कि आपको अपना काम कैसे करना है। तो दोनों को ही एक दूसरे के संग हस्तक्षेप नहीं करना है। इसीलिए जरूरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों को ना बाधा पहुंचाए और धार्मिक संगठन भी राज्य में हस्तक्षेप ना करे। राज्य को चाहिए वह न तो धर्म की मदद करे ना उसे बाधा पहुंचाए, और इस तरीके से राज्य के लिए धर्म को एक दूरी, सम्मानजनक दूरी बनाए रखना जरूरी है। और इसी तरह राज्य को भी चाहिए कि नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हुए वह धर्म के आधार ना बनाए। अगर जो भी मौलिक अधिकार है देश बनाता है, कोई भी सामान्य कानून भी बनाता है, तो वो सबके लिए है। ऐसा ना हो कि कहा जाए कि इस धर्म के लिए है, इस धर्म के लिए नहीं है। जैसे पश्चिमी देशों में है, वहां पर ईसाई धर्म की कई शाखाएं हैं, चर्च भी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है, परंतु हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो हमारे देश में इस असमानता से बचने के लिए जरूरी था कि व्यक्ति के खुद के धार्मिक अधिकार हो, राज्यों की रक्षा करे। रक्षा करने का मतलब है कि व्यक्ति जो अपना धर्म अपनाना चाहता है, राज्य उसको फ्री करे। वो अपने धर्म को किस तरीके से पूजा करना चाहता है, व्यक्ति उसके लिए फ्री रहे। रक्षा करना है लेकिन इंटरफेयर नहीं करना। और यही कारण था कि, और दूसरा, हमारे देश में धर्म भी है, और इस चुनौती से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की वैकल्पिक धारणा का विकास किया। और संविधान निर्माता धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल से, जो हम पश्चिमी मॉडल की अभी हमने बात की कि वहां चर्च भी कुछ राजनीतिक रूप से सक्रिय रहता है, उस मॉडल से दो रूपों में अलग हुए और उसके दो अलग कारण थे। अब हम जानते हैं कि हमारी धर्मनिरपेक्षता राज्य ने क्यों अपनाई। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, वो मानते थे कि विभिन्न समुदायों के बीच बराबरी होनी चाहिए, है ना। जितना विभिन्न व्यक्तियों के बीच बराबरी है, जितना हर व्यक्ति बराबर है, वैसे ही हर धार्मिक व्यक्ति भी समुदाय बराबर होना चाहिए। और इसी कारण वो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या आत्मसम्मान का भाव सीधे सीधे उसके समुदाय की हैसियत पर निर्भर करता है। अगर एक समुदाय दूसरे के प्रभुत्व में होगा, तो कभी भी कोई व्यक्ति ना तो स्वतंत्र होगा ना समान होगा। इसीलिए जरूरी था कि जो भी समुदाय है वो सब बराबर हो, ना कोई किसी पर प्रभुत्व जमाए, ना कोई किसी से छोटा हो। तो सबको, हर समुदाय को अपनी आजादी और आत्मसम्मान। और यही कारण था कि सभी धार्मिक समुदायों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान किया, लेकिन जो खासकर अल्पसंख्यक समूह है, उनको आजादी दी गई कि आप अपने धार्मिक संस्थान चला सकते। परंतु भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता है, उसका मतलब क्या था कि व्यक्ति और समुदाय दोनों धार्मिक रूप से फ्री है। लेकिन देश का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। जैसे आपने कई इस्लामिक कंट्रीज हम सुनते हैं, जैसे पाकिस्तान वो इस्लामिक कंट्री है ना, कहते हैं इस्लामिक है, तो वो कहता है कि हमारा धर्म है, परंतु भारत देश का आपका कोई अपना देश का कोई धर्म नहीं, वो धर्म निरपेक्ष। दूसरी बात कि राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार। तो भारत में धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ है भारत में पारस्परिक निषेध नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि धर्म से अनुमोदित विवाद, मतलब जैसे छुआछूत व्यक्ति को उसके बुनियादी गरिमा से वंचित कर, इन विवादों की पेट बहुत गहरी थी और राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना इसका खात्मे का उम्मीद नहीं थी। तो कभी कभी देखिए, कभी कभी जो राज्य को धर्म में थोड़ा सा हस्तक्षेप कभी कभी करना पड़ता है, तो एकदम से धर्म और राज्य अलग नहीं हो सकते। जैसे हमने छुआछूत का उदाहरण देखा, अब वो किसी धर्म में होता है तो उसको छुआछूत तो खत्म करना है, तो इसके लिए कभी कभी राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो राज्य ऐसे में धार्मिक समुदायों की भी कभी कभी मदद करता है, जैसे धार्मिक संगठन द्वारा चलाए जा रहे जो शिक्षा के संस्थान है, अगर उनको कुछ, जैसे आपने देखा होगा कि जो मदरसा बोर्ड होते हैं उनको कहते हैं कि सरकार ने मदद की, तो वो जो मदद होती है वो पैसे की भी होती है, अगर जरूरी है तो उनको धन दे सकते हैं। इस तरीके से राज्य धार्मिक समुदायों की भी मदद कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि राज्य कितना हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसको हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसको एक कहेंगे कि मदद करना है। तो भारत में जो धर्म और राज्य है उसको हम पारस्परिक निषेध तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ राज्य धर्म से एक दूरी बना के जरूर रखता है, क्योंकि कभी जरूरत पड़ी तो वो हस्तक्षेप भी करता है। और ये जो सारा मामला है ये धर्म और राज्य पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से एक दूसरे के संग पारस्परिक रूप से रहते हैं, एक दूसरे को कैसे स्वतंत्रता देते हैं, और देश में अन्य जो मामले होते हैं देश में, जैसे स्वतंत्रता है, समता है, सामाजिक न्याय है, दोनों मिलकर उसकी कैसे रक्षा करते हैं। तो हमने ये विशेषताओं को पढ़ा और इन्हें हमारे संविधान की हम उपलब्धि भी कह सकते, जो धर्म निरपेक्षता है ये हमारी एक उपलब्धि ही है, ये हमारा राजनीतिक दर्शन ही है। क्योंकि पहली बात तो ये कि हमारे संविधान ने उदारवादी व्यक्तित्ववाद को एक शक्ल दी, ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि सब एक ऐसे समाज में किया गया जहां सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वायत्तता का कोई महत्व नहीं देती, शत्रुता का भाव रखती थी, मतलब हमारे यहाँ उदारवादी व्यक्तित्ववाद, मतलब सामाजिक न्याय भी है, व्यक्ति को भी फ्रीडम है, समुदायों को भी फ्रीडम है, और एक सामाजिक न्याय भी है, जो हमने अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में पढ़ा, आरक्षण दिया, वो सामाजिक न्याय भी है। तो इतने अलग अलग हमारे यहाँ ग्रुप्स हैं, इतनी जातियां धर्म है, फिर भी देश पूरा एक। दूसरा, हमारे देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बिना आंच लाए हमने सामाजिक न्याय भी दी। तो जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना, जिसको अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम कहते हैं, वो भी हमारे देश में दिखा। जैसे आप इसको कहेंगे कि कोई नई, एक उदाहरण हम दे सकते हैं अमेरिका का, जहाँ पर नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद तब क्या के वहां पे सकारात्मक कार्य योजना चालू हुई, लेकिन भारत में सकारात्मक कार्य योजना जाति के आधार पर भी लोगों को व्यक्तिगत फ्रीडम भी मिली, साथ में सामाजिक न्याय भी मिला। जैसे आप अमेरिका में रंग भेद था, आप रंग भेद की नीति जानते, तो वहां पे जनता को आंदोलन करना पड़ा, परंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ, हमारे संविधान ने ही सामाजिक न्याय की अवधारणा को अपने आप प्रस्तुत किया। और तीसरी बात हमारी मुख्य है कि भारतीय संविधान में विभिन्न समुदाय में तनाव रहता है, झगड़े होते ही है, अलग अलग लोग रहे तो, फिर भी सबको उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता की अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान किया, आप अलग धर्म के अलग संस्कृति उसकी रक्षा की जाएगी। तो इससे पता चलता है कि संविधान निर्माता उस चुनौती से निपटने के लिए बहुत पहले से तैयार थे जो क्या देशवाद बहु संस्कृतिवाद के नाम से जाएंगे। हम कहते हैं ना हमारा देश बहु संस्कृतिवाद है, बहु मतलब बहुत सारी सारी अलग अलग संस्कृतियां हैं। तो ये सब हमारे संविधान की पहचान है। तो हमने धर्मनिरपेक्षता को समझा। अगला है सार्वभौम मताधिकार, ये हमने पहले भी पढ़ा है। इसका मतलब है कि बिना किसी ऊंच नीच के, लिंग भेद के, रंग भेद के, बिना किसी भेद के सबको, हर व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सार्वभौम मताधिकार के प्रति वचनबद्धता अपने आप में कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, खास तौर पर उस स्थिति में जब माना जाता हो कि भारत में ऊंच नीच का व्यवहार बहुत ज्यादा होता है, उसे समाप्त करना असंभव। सार्वभौम मताधिकार को अपनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा गया क्योंकि पश्चिम के उन देशों में भी जहां लोकतंत्र की स्थायी जड़ थी, कामगार तबके और महिलाओं को मतदान का अधिकार बहुत सालों बाद मिला। तो यही कारण, देखिए हमारे देश में इतने धर्म जात सब कुछ है लेकिन सबको मतदान करने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के। कई देशी देश ऐसे थे जहाँ पे पहले लोकतंत्र तो था पर महिलाएं वहां वोट नहीं दे सकती थी। आप अमेरिका का ही उदाहरण ले सकते हैं, जो मजदूर है वोट नहीं दे सकते थे। रशिया का उदाहरण आप देखिए। लेकिन हमारे यहाँ जिस दिन से संविधान लागू हुआ, पहली बार जब चुनाव हुआ देश में लोकतांत्रिक ढंग से, सबको मतदान का अधिकार मिला। तो भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से 1895 में हुआ था। इस पहले प्रयास में भी घोषणा की गई थी कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट करने का और सरकारी पद हासिल करने का हक है। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट हमने पहले भी पढ़ी 1928 में, इसमें भी कहा गया था, उन्होंने उस उम्र दी थी कि जो भी 24 वर्ष की आयु का व्यक्ति होगा उसको लोकसभा में मतदान करने का अधिकार होगा। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी कामयाबी है कि जो भी इस देश में पैदा हुआ है, जो इस भूमि का है, उसको वोट करने का सार्वभौम मताधिकार का अधिकार प्राप्त होगा। तो इसी तरीके से शुरुआती दौर से ही सार्वभौम मताधिकार को अत्यंत महत्वपूर्ण और वैधानिक साधन माना गया, जो जहां पर जनता अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति कर सकती है। तो सार्वभौम अधिकार एक राजनीतिक दर्शन का पक्ष है। अब है संघवाद। तो हमने संघवाद को पहले पढ़ा कि किस तरीके से भारत में केंद्रीय सरकार है और राज्य सरकार है। तो संविधान का झुकाव जरूर केंद्र सरकार की तरफ है, परंतु जो विभिन्न संघ की इकाइयां हैं उनको भी विशेषाधिकार दिए हुए हैं। और जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर से संबंधित अनुच्छेदों को जगह देकर भारतीय संविधान ने असमतोल संघवाद जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को अपनाया है। असमतोल संघवाद है, इसका मतलब ठीक है वहां पर कुछ पावर, स्पेशल पावर दी गई क्योंकि वहां पर उस समय उस चीज की जरूरत थी। खासकर जम्मू कश्मीर हमने 370 और पूर्वोत्तर के लिए 371 अनुच्छेद पढ़ा, जो 370 है उसे हटा दिया गया है क्योंकि उसकी वजह से वहां पर कुछ गलत गतिविधियां हो रही थी जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। तो जो हमारा संविधान है वो भी संघवाद को इम्पोर्टेंस देता है, जरूर कहता है कि केंद्र मजबूत होना चाहिए, उसके भी कारण हमने पढ़े थे, लेकिन उसने राज्य को भी अधिकार दिए हैं। अमेरिकी संघवाद की संवैधानिक बनावट समतोल है लेकिन हमारी असमतोल है। मतलब अमेरिका में हर राज्य को बराबर बराबर शक्तियां हैं, हमारे यहाँ नहीं है क्योंकि हमने देखा कि हमारे कुछ राज्य बहुत बड़े हैं, कुछ राज्य छोटे हैं। जैसे हमने उत्तर प्रदेश और सिक्किम का उदाहरण देखा, परंतु जो राज्य हैं उनको भी उनकी फ्रीडम दी गई है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा जरूर दिया गया है परंतु उनकी स्वायत्ता बनाने के लिए कुछ विशेष दर्जा दिया गया। और एक सिर्फ शायद ये जम्मू कश्मीर ही है जिसका अपना एक संविधान था। और इस तरीके से कुछ राज्यों को दिया, पूर्वोत्तर के राज्यों को भी हमने 371 दिया, परंतु यहाँ पर भी उनकी कारण उनका स्थायी पहचान बनाए रखना था। ये राज्यों में कुछ गतिविधियां ऐसी थी कि जिनके रोकथाम के लिए जरूरी था कि उनको स्वायत्तता। तो भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न प्रदेशों के साथ इस असमान बर्ताव में कोई बुराई नहीं है, जो स्पेशल पावर्स है वो कोई गलत बात नहीं है। हमारे संविधान में मूल रूप से बात नहीं कही गई, परंतु आज भारत एक बहुभाषिक संघ है। हर बड़े भाषाई समूह की राजनीतिक मान्यता है और इन्हें बराबरी का दर्जा प्राप्त है। तो इस तरह भारत के लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद ने सांस्कृतिक पहचान के दावे को एकता के दावे से जोड़ने में सफलता पाई है। तो जो संघवाद है वो भी हमारे देश का एक दर्शन। अब बात आती है राष्ट्रीय पहचान की। तो आपने देखा कि हमारा जो संविधान है तो राष्ट्रीय पहचान पर बहुत जोर दिया है, और हमने देखा कि हमारी एक राष्ट्रीय पहचान का भाषा, धर्म, इन सबसे एक हमने मिलकर एक पहचान बनाई। देश में सबको स्वतंत्रता है, भाषा के लिए, धर्म के लिए सबकी अलग अलग पहचान है, लेकिन फाइनली जाकर राष्ट्रीय एकता की ही बात होती है। तो भारतीय संविधान में धर्म और भाषा के बीच संतुलन बनाने की भी कोशिश की गई। फिर भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता दी गई। इसे धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल बनाने के संबंध में हुई बहस में भी स्पष्ट किया गया। संविधान में ऐसे निर्वाचन मंडल की बात कहा गया था ना कि धर्म के आधार पर इलेक्शन होना चाहिए, सीट धर्म के आधार पर होनी चाहिए, इसको हमने नकार दिया क्योंकि ये हमारी देश की जो पहचान है भारतीय होने की, इसको ये आघात कर सकती। पृथक निर्वाचन मंडल की बात को नकारने का कारण ये नहीं था कि इससे को मानने पर विभिन्न धार्मिक समुदाय में भेद पैदा हो और अथवा राष्ट्रीय एकता की धारणा पर खतरा उत्पन्न होगा। को नकारने का कारण यह था कि इससे राष्ट्रीय जीवन सहजता में बाधा पहुंचती है। तो ये राष्ट्रीय पहचान की हमारी बात थी कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, इसके बाद जब हम देश में तो अपना धर्म है, भाषा है, सब है। तो जब आप यहाँ से कहीं आप विदेश भी जाएंगे तो आपको सबसे पहले यही बताना है कि हम भारतीय हैं। वहां आपसे नहीं पूछता कि आप कौन से धर्म के हैं, कौन सी जात के हैं। हम एक भारतीय, यही हमारी एक पहचान है। यहां तक हमने पढ़ा, अब हम आगे चलेंगे प्रक्रियागत उपलब्धि। प्रक्रियागत उपलब्धि क्या है इसको समझेंगे। देखिए, ऊपर बताई गई पांच केंद्रीय विशेषताओं को हमारे संविधान की आधारभूत महत्व की उपलब्धि कहा जाता है। हमने उपलब्धियां समानता है, स्वतंत्रता है, धर्मनिरपेक्षता है, संघवाद है, राष्ट्रीय एकता है, ये हमारे संविधान की सबसे इम्पोर्टेंट उपलब्धियां हैं। परंतु इसके संग कुछ प्रक्रियागत भी हुआ। इसका मतलब है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके साथ साथ में भी कुछ चीजें निकल कर आई, और ये भी हमारी उपलब्धि ही है, हमारे राजनीतिक दर्शन की उपलब्धि है। तो इन उपलब्धियों को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श में। बिल्कुल, आपने देखा कि इतनी बहस हुई और संविधान बना तब भी, अभी भी संसद में बहस होती है, लेकिन कहा गया कि विचार विमर्श चलते रहना। और हम सब इस बात को जानते हैं कि बहुत से समूह हैं, हित हैं, वो संविधान में उनको कभी कभी किसी को कोई नुमाइंदगी मिली, किसी को नहीं मिली। लेकिन एक बात साफ है कि संविधान निर्माताओं को जो नजरिया था, जैसा कि सबको शामिल करते थे, और ये खुलापन इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता परिणामों को अपने स्वार्थों की तुला पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि की तुला पर तौल कर परखने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये है कि हम जो भारतीय हैं, हम विचार विमर्श पर बहुत विश्वास करते हैं। हम अलग अलग भाषा के, अलग धर्म के हैं, लेकिन हमारी संविधान सभा ने क्या कहा, सबको शामिल करके चलना है। और हम नहीं मानते कि हमारे स्वार्थ बाद में आते हैं, पहले हमारी बुद्धि काम करती है, हम विचार करते विमर्श करते हैं, वाद विवाद होता है, लेकिन उन वाद विवादों से कुछ अच्छा ही निकल कर। तो इससे यह भी पता चलता है कि संविधान निर्माता असहमति और विभेद को एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखते थे। तो हमारे संविधान के जो निर्माता थे उनका कहना था कि कितना भी विचार विमर्श हो ये अच्छा है, विवाद हो चलता है, लेकिन चलते रहना चाहिए। दूसरा, इससे सुलह और समझौते के जज्बे को भी पता चलता है, क्योंकि हमें ये नहीं, हम कहते ना उसने सुलह कर दी, ऐसा होता ये नहीं कि वो डर गया या वो कमजोर है। हर समझौता बुरा नहीं होता, हर सुलह बुरी नहीं होती, अगर इससे कुछ अच्छा मूल्य निकल कर आता है, कोई अच्छा हमें सौदा मिलता है कि अगर हम तो मिलकर साथ रह सकते हैं एक समझौता करने के, तो इसमें क्या गलत है। तो ऐसे समझौते पर हम आपत्ति नहीं उठा सकते। हम इस बात का अफसोस कर सकते हैं कि हमारे पास हर चीज होनी चाहिए परंतु है नहीं, फिर भी हर चीज को थोड़ा थोड़ा हासिल कर लेना नैतिक दृष्टि से उंगली उठाने लायक नहीं है। संविधान सभा इस बात पर अधिक थी कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत की बजाय सर्वानुमति से ली जाए, और ये बहुत बहुत अच्छी कि उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण जो भी फैसला हो वो सबके संग मिलकर लिया जाए, सबकी बातों को सुना जाए, ये बहुत जरूरी है। अब हमारे संविधान की हम आलोचना पर आ रहे हैं, पृष्ठ क्रमांक 234 पर है। तो तीन बातें यहाँ पर की गई हैं। एक तो ये कहा गया है कि हमारा संविधान अस्त व्यस्त है, इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकती, और तीसरा कहा गया है ये संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। देखिए, इसको अस्त व्यस्त कहा गया है, तो इसके पीछे ये सोच है कि किसी संविधान को आप एक कसे हुए दस्तावेज के वेज के रूप में आप प्रस्तुत नहीं कर सकते। अमेरिका है, वहां कसा हुआ दस्तावेज है, मतलब सच बात ये कि किसी देश का संविधान एक दस्तावेज तो होता है, इसमें संविधानिक हैसियत वाले कुछ अन्य दस्तावेज भी शामिल किए जाते हैं। इस तरह इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ महत्वपूर्ण संविधानिक कायदे उस कसे हुए दस्तावेज से बाहर मिले जिसे संविधान कहा जाता है। जहां तक भारत का सवाल है, संविधान हैसियत के ऐसे बहुत से वक्तव्यों को हमने हैसियत जो भी उसको कहेंगे उसको इम्पोर्टेंस या उसके जो कायदे हैं उनको एक दस्तावेज में नहीं समेटा है। तो हम अपने देश की बात करें, वहां पर बहुत सी कुछ चीजें बाहर से भी निकल आई संविधान की, जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से देशों के संविधानिक दस्तावेज में चुनाव आयोग या लोक सेवा आयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ प्रावधान है। तो आपको याद है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, उस वक्त सार्वभौम मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था, संविधान सभा के अधिकांश सदस्य समाज के अगले तबके के थे। तो क्या इससे लगता है कि देश के सभी लोगों की नुमाइंदगी हमारे संविधान में नहीं हो सकी? ये जरूरी है कि हम नुमाइंदगी के दो हिस्सों में फर्क करें, एक इसको जिसको आप आवाज कह सकते हैं, दूसरे को राय। नुमाइंदगी में आवाज अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, सबको आवाज, आवाज मतलब सबको अपनी बात कहने का हमारे अधिकार है, ये बात तो बहुत सही है। लोगों की पहचान खुद उनकी जुबान और आवाज होनी चाहिए, ना कि उनके मालिकों की आवाज। तो अगर हम इस दृष्टि से विचार करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी मौजूद मिलेगी, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य सीमित मताधिकार से चुने गए थे, ना कि सार्वभौम। अगर हम नुमाइंदगी के दूसरे पहलू राय पर गौर करें तो संविधान में गैर नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। खैर, ये तो अपने अपनी अतिशयोक्ति है कि संविधान सभा में हर किसी की राय रखी गई, लेकिन इसमें सच्चाई का एक पुट है। यदि हम संविधान सभा में हुई बहसों को पढ़े तो जाहिर होगा कि सभा में बहुत से मुद्दे उठाए गए, बड़े पैमाने पर राय रखी। तो देखिए, ये आप अगर ये कहें कि सबकी राय नहीं ली गई थी तो ये तो गलत था, क्योंकि देखिए संविधान सभा को चुनने का तरीका अलग था। संविधान सभा को अप्रत्यक्ष ढंग से चुना गया था, इसीलिए शायद कहते हैं कि सबकी वहां पर राय नहीं थी, परंतु उसमें सबको बाद में संविधान सभा ने सबको सार्वभौम मताधिकार का अधिकार भी दिया। और आरक्षण भी दिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आवाज सबकी सुनते। क्या ये सहयोग मात्र है कि आज हर शहर के नुक्कड़ पर हमें हाथ में संविधान लिए अम्बेडकर की प्रतिमा मिलती है? यह अम्बेडकर के प्रति बहुत सांकेतिक श्रद्धांजलि नहीं है, यह प्रतिमा दलितों की भावना का इजहार करती है कि संविधान में उनकी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई है। एक अंतिम आलोचना ये कि भारतीय संविधान एक विदेशी दस्तावेज है, ये विदेशों की नकल है। और परंतु बहुत से लोग कहते हैं कि ये भारतीय संस्कृति से बोध नहीं खाता, और कई संविधान सदस्य ने भी इस बात को उठाया था, लेकिन एक दृष्टि से भारतीय संविधान अत्यंत भ्रामक है, क्योंकि इस संविधान की सांस्कृतिक और मूल्य परक गतिमती भारत असली जनता है और उसके विचारों की सांस्कृतिक तथा मूल्य परक गतिमती के साथ अनुकूल नहीं है। तो ये भी कहा जाता है कि हमने सब विदेशों से उठाकर लिख लिया, तो ये भी एक बहुत बड़ी आलोचना हमारे यहाँ होती है हमारे संविधान की। तो देखिए अब है कि ये जो बातें लिखी गई हैं वो कितनी सच हैं, इस पर भी बहुत से लोग चर्चा करते हैं। परंतु आप खुद जब आप इतना संविधान पढ़ चुके हैं तो उसके बाद अब आप अपनी इस व्यवस्था को आप खुद ही देख सकते हैं कि ये आरोप कितने सच होंगे। तो एक बार इसको भी हम देख लेते हैं कि ये बात सच है कि भारतीय संविधान आधुनिक और थोड़ा सा पश्चिमी है, लेकिन ये पूरे तरीके से विदेशी नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ पे अनेक भारतीयों ने चिंतन का न सिर्फ आधुनिक तरीका अपनाया बल्कि उसे आत्मसात भी किया। लोगों ने पश्चिमीकरण अपनी परंपरा की बुराइयों के विरोध का एक तरीका था, जैसे राजा राम मोहन राय की कुछ छुआछूत की परंपरा, कुछ स्त्रियों पे जो गलत चीजें होती थी उनके संग सती प्रथा, ये सब उनका विरोध अगर पश्चिमी चीजों को देखकर हमने किया है तो वो कोई गलत नहीं है। अगर छुआछूत का भेदभाव होता था तो वो गलत था। तो अगर हमने पश्चिम से कुछ चीज ली है, अगर अच्छी चीज ली है तो वो कोई गलत बात नहीं है। तो आधुनिक कानूनों का सहारा लेकर अगर हम लोगों को गरिमा और इंसाफ दे सकते हैं और हम कहें कि हम पश्चिम से इसकी तरफ हमारा झुकाव था, तो ये भी एक तरीके की हमारी प्रेरणा ही है। और जब पश्चिमी आधुनिकता का स्थानीय सांस्कृतिक व्यवस्था से टकराव हुआ तो एक किस्म की सकर संस्कृति का उत्पन्न हुआ। ये संकर संस्कृति पश्चिमी आधुनिकता से कुछ लेने कुछ छोड़ने की रचनात्मक प्रक्रिया का परिणाम है। मतलब हमने कुछ लिया और अपना कुछ मिलाकर एक नई संस्कृति को हमने बनाया। तो इस बहुमुखी परिघटना में वैकल्पिक आधुनिकता का चरित्र है। गैर पश्चिमी मुल्कों में लोगों ने सिर्फ अपने अतीत के आचारों से ही छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने ऊपर थोपी गई पश्चिमी आधुनिकता के एक खास रूप के बंधनों को भी तोड़ना चाहा। इस तरह जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो हमारे मन में परंपरागत भारतीय और पश्चिमी मूल्यों के स्वस्थ मेल का भाव था। तो यही बात है कि हमने किसी की नकल नहीं की है, हमने जो भी अच्छा मिला उसको अपनाया। तो सब इसकी अब हम सीमाओं पर आ जाते हैं कि इन बातों का मतलब नहीं है भारत का संविधान हर तरीके से पूर्ण और त्रुटिहीन है। देखिए सब में कुछ ना कुछ दिक्कतें तो होती हैं और कई विवादास्पद मुद्दे भी आते रहते हैं जिनका हम पुनरावलोकन भी करते हैं। और इस संविधान की बहुत सी बातें समय के दबाव में पैदा हुई, फिर भी हमें स्वीकारना चाहिए कि हमारे संविधान की कुछ सीमाएं हैं। अब हम संविधान की सीमाओं को देख लेते हैं। देखिए हर चीज में कमी होती है, हर कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती। तो हमारे जो संविधान है उसकी सीमाओं को हम देख लेते हैं कि पहली बात तो ये कि यहाँ पर राष्ट्रीय एकता की भावना बहुत केंद्रीकृत है। दूसरा, इसमें लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है। एक तो राष्ट्रीय एकता मतलब सबसे ज्यादा केंद्रीकरण हुआ, और दूसरा लोग कहते हैं कि लिंगिकत न्याय तो महिलाओं के लिए उतना जोर नहीं दिया गया। तीसरी बात स्पष्ट है कि गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय उसे राज्य के नीति निर्देशक वाले तत्वों में क्यों डाल दिया। तो कुछ चीजें ऐसी थी जिनको कह रहे थे कि गरीबों से रिलेटेड होने चाहिए, मौलिक अधिकार होने चाहिए, लेकिन उनको हमने कुछ बातों को नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया उसकी थोड़ी सी आलोचना है। वो सीमाएं लोग कहते हैं और संविधान की इन सीमाओं के कारण को समझना और दूर करना संभव है, लेकिन यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा तर्क ये है कि संविधान की सीमाएं इतनी गंभीर नहीं है कि इससे संविधान के दर्शन को खतरा पैदा कर देते। ये देखिए छोटी छोटी बातें, हमने जो इसकी सीमा देखी और इसका जो आलोचना देखी ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। ठीक है, आलोचना हमने की, देखा कि हमने पश्चिम से कुछ लिया है और ये सामाजिक न्याय को उतना हमने नहीं इम्पोर्टेंस दिया, ऐसा लोगों का कहना। परंतु आप देखिए कि जो भी है हमारा संविधान इतना गठित है, इतना अच्छा है कि आज भी 70 साल बाद भी वो कार्यरत। और कोई भी हमारे संविधान में जो भी दर्शन दिए हैं, लोकतंत्र हो, समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, सभी एक देश के लिए बहुत जरूरी है। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि संविधान एक दस्तावेज है, जीवंत दस्तावेज है। संविधान की केंद्र विशेषता उसे जीवंत बनाती है। कानूनी प्रावधान और संस्थानिक व्यवस्था समाज की जरूरत तथा समाज द्वारा अपनाए गए दर्शन पर निर्भर है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से समझते हैं। और सबसे जरूरी है कि हम अपनी प्रस्तावना को पढ़ें। जो प्रस्तावना है, जो लिखा है ना कि हम भारत के लोग, तो यहीं से संविधान की शुरुआत होती है। तो ये जो हमारा प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, जब सारा दारोमदार जनता पर है, वो किस तरीके से संविधान को जीवंत रखना चाहते हैं। तो आज इतने साल हो गए हैं इस प्रस्तावना के, और ठीक है कुछ मामलों पे असहमति है, हमने देखा अदालतों, सरकारों में है, केंद्र और राज्य में है, राजनीतिक दलों में है, परंतु ये सब बातें हमारे को बहुत पीछे छोड़ देती हैं जब हम हमारे राजनीतिक दर्शन को देखते हैं। और हमें ये मानना चाहिए कि हम सबको साथ रहना है, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना के आधार पर हमको समृद्धि लाना है और इस संविधान के दर्शन को जीवंत रखना, ये हमारा काम है, जनता का काम है। और अगर हमने इसे जीवंत रख लिया तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को विराम देते हैं और ये हमारा दर्शन था। जब आप जब अगली कक्षा में जाएंगे 12वीं में, तब इसके बारे में और डिटेल आपको दिया गया है जिसको आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जो थोड़े छोटे प्रश्न हैं, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपसे कहा वो आप खुद ही करेंगे। मैं कुछ प्रश्नों को यहाँ पर आपके सामने रख रही हूँ, तो अभ्यास प्रश्न आपको प्रश्न है। नीचे कुछ कानून दिए हैं, क्या इनका संबंध किसी मूल्य से है? यदि हाँ तो वो अंतर्निहित मूल्य क्या है, कारण बताएं। आपको बताना है कि किस मूल्य से, हम मूल्यों की बातें कर रहे थे। तो देखिए, पहला है क, पुत्र और पुत्री दोनों का परिवार की संपत्ति में हिस्सा होगा। तो ये किसका मूल्य है? समानता का, है ना, क्योंकि समानता के आधार पर दोनों को बराबर समझा गया है। ख, अलग अलग उपभोक्ता वस्तुओं के बिक्री कर का सीमांकन अलग अलग होगा। इसमें ये कोई मूल्य नहीं, आपके ही गलत है, क्योंकि अलग अलग उपभोक्ता वस्तुओं के बिक्री कर का सीमांकन अलग अलग तरीके से करना मतलब ये समानता नहीं है। ग, किसी भी सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इससे हमें क्या मूल्य पता चलता है कि धर्म निरपेक्षता है हमारे। घ, बेकार अथवा बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये हमने हमारा जो मौलिक अधिकार था जहाँ पर बेकार और बंधुआ मजदूरी को इलीगल माना गया, उसका मूल्य हमें। प्रश्न दो, नीचे कुछ विकल्प दिए जा रहे हैं, बताएं कि इसमें किसका इस्तेमाल निम्नलिखित कथन को पूरा नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत है, क ख ग घ घ हम उसे पढ़ लेते हैं। सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखने के लिए होती है, अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक से सुरक्षा देने के लिए होती है, उपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि क्षणिक आवेग में दूरगामी के लक्ष्यों से कहीं विचलित न हो जाएं, शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक बदलाव लाने के लिए। तो लोकतांत्रिक देश को संविधान की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि वो उपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता अर्जित कर सके। इसके बाद आपका प्रश्न है संविधान की सभा को बहसों को पढ़ने और समझने के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और इनको आपको पढ़ना है, तर्क प्रस्तुत करना है कि इसमें से कौन सी बातें प्रासंगिक हैं। हम पहला देख लेते हैं, तो आम जनता अपनी जीविका कमाने और जीवन की विभिन्न परेशानियों की निपटा में व्यस्त होती है। आम जनता इन बहसों की कानूनी भाषा को नहीं समझ सकती। आज की स्थितियां चुनौतियां संविधान बनाने की वक्त की चुनौती और स्थितियों से अलग है। संविधान निर्माता के विचारों को पढ़ना और अपने नए जमाने में इस्तेमाल करना दरअसल अतीत को वर्तमान में खींच लाना है। ग संसार और मौजूदा चुनौतियों को समझने की हमारी दृष्टि पूर्णतया नहीं बदली है। संविधान सभा की बहसों से ही हमें ये समझने में तर्क मिल सकते हैं कि कुछ संवैधानिक व्यवहार क्यों महत्वपूर्ण है। एक ऐसे समय में जब असंवैधानिक व्यवहारों को चुनौती दी जा रही है, इन तर्कों को न जानना संवैधानिक व्यवहारों को नष्ट कर सकता है। तो अब आपने देख लिया कि जो कर था उसमें प्रयास किया गया कि संविधान में हुई बहसों की आज की परिस्थिति में कोई उपयोगिता नहीं, तो गलत है, उपयोगिता तो है। और गम इसकी उपयोगिता बताई गई, में कहा गया कि आम व्यक्ति को इसकी भाषा नहीं समझ में आती है, तो क्योंकि कोई लोगों को रुचि नहीं है, लोग अपना कमाने में व्यस्त हैं, परंतु इनका उसके जीवन से उपयोगिता है। तो जो क और ख है बातें एक तरीके से सही है, परंतु हमें ग का ही समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आज भी वो जो बातें लिखी गई थी, जो भी बहस थी, उसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। प्रश्न क्रमांक 4 थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे हम छोड़ देंगे। अब हम आखिरी प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। निम्नलिखित में धर्म निरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया है? क राज्य का कोई धर्म से लेना देना नहीं है। ह राज्य का धर्म से नजदीकी रिश्ता है। ग राजधर्मियों के बीच भेदभाव पैदा कर सकता है। ध राज्य धार्मिक समूह के अधिकार को मान्यता देगा। ड राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने की सीमित शक्ति है। हम पढ़ चुके हैं धर्म निरपेक्षता और बहुत आसानी से कह सकते हैं कि धर्म का राजनीतिक जो राज्य है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। क तो राज्य धर्म में हमारे अंतो हस्तक्षेप करता ना, धर्म राज्य में हस्तक्षेप करता है। तो ये हमारे प्रश्न हुए, बाकी प्रश्न आप इसको आराम से कर सकते हैं। जब आप इसे चैप्टर पढ़ेंगे तो इसे ऑडियो सुनेंगे, तो ये एक तरीके से ये चैप्टर आपको इजी भी लगना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उन सबका सार जो हमने पहला चैप्टर शुरू किया था संविधान सभा से समझने से लेकर आखिर तक हमने जो स्थानीय शासन तक बातें पढ़ी, न्यायपालिका के बारे में पढ़ा, लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा, उन सबका सार इस चैप्टर में दिया गया है कि उन्हें हमने क्यों दिया, वो हमारे लिए क्यों जरूरी थे वो कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम अब रुकते हैं, अपने आप को विराम देते हैं और यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक पूर्ण होती है। और थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।